ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। सरकार और प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के बीच सहमति और सहकार्य करते हुए आगे बढ़ने पर बनी सहमति। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी के कुछ प्रावधानों को परिमार्जन करते हुए संसद से पारित किया जाएगा। गृहमंत्री राम बहादुर थापा का कथन। चीन में दिखे कोरोना वायरस को नेपाल में फैलने से रोकने के लिए सजगता अपनाने का स्वास्थ्य विज्ञों ने दिया सुझाव। और कोरोना वायरस के कारण चीन में मरने वालों की संख्या 41 पहुंची। हांगकांग में संक्रमण से बचने के लिए आपातकाल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा के बीच देश की समसामयिक राजनीतिक स्थिति के बारे में विचार विमर्श हुआ। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुए विचार विमर्श में वे देश संचालन को लेकर साझा सहमति और सहकार्य के आधार पर आगे बढ़ने की बात पर सहमत हुए। ये बात बैठक में सहभागी नेकपा संसदीय दल के उपनेता सुवास ने मांगने बताई। उन्होंने बताया कि देश संचालन के संदर्भ में कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें प्रतिपक्षी के साथ मिलकर करना पड़ता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने प्रतिपक्षी दल के नेता के साथ विचार विमर्श किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि संसद संचालन से लेकर राजनीतिक नियुक्ति तक आपसी समझदारी के आधार पर करने की सहमति हुई है। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने नेकपा और राजपा का गठबंधन और सहकार्य लंबे समय तक रहने की बात कही। राष्ट्रीय सभा चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा महोत्तरी द्वारा आज बर्दिवास में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पोखरेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तराई मधेश के विकास और समृद्धि के लिए दो पार्टियों के बीच सहकार्य होना चाहिए, इसलिए दो नंबर प्रदेश सभा में भी सहकार्य और गठबंधन जरूरी है। ये बताते हुए राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए प्रदेश नंबर दो में नेकपा और राजपा के बीच चुनावी एकता और सहकार्य महज निर्वाचन भर के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ये तो एक शुरुआत थी। गृहमंत्री राम बहादुर थापा ने कहा कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी के कुछ प्रावधानों को परिमार्जित कर इसे संसद से पारित किया जाएगा। आज सुर्खियत में प्रेस मीट के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए एमसीसी को राष्ट्रीय हित में लाए जाने की बात पर बहस चल रही है। गृहमंत्री थापा ने कहा कि सभामुख के चयन के बाद एमसीसी का प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत होगा। ये बताते हुए कि शांति और स्थायित्व के बिना देश विकास संभव नहीं है, उन्होंने कहा कि विप्लव समूह को मूल प्रवाह में लाने की कोशिश अभी भी जारी है। माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाने वाला सोनाम लोसार पर्व तामांग समुदाय ने आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। मंजूश्री पंचांग के अनुसार आज से नया साल 2056 शुरू हुआ है। ये त्यौहार विशेषकर तामांग, शेरपा, गुरुंग, मगर, थकाली, जीरेल आदि समुदाय उत्साह के साथ मनाते हैं। चीन में विकराल बनते जा रहे कोरोना वायरस का नेपाल में भी दुष्प्रभाव पड़ सकने के मद्देनजर सरकार वालों ने इसके प्रति सजगता अपनाने का भी आग्रह किया है। आज रिपोर्टर्स क्लब के एक साक्षात्कार कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता महेंद्र श्रेष्ठ ने कहा कि कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है, इसलिए सावधानी जरूरी अपनाना चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि चीन से नेपाल आए एक नेपाली नागरिक में वायरस का संक्रमण जरूर पाया गया है, मगर अन्य लोगों में भी ये फैल ही जाएगा, ऐसा सोचना डरने की जरूरत नहीं है। मौके पर शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सर्वा रोग अस्पताल के निदेशक डॉ. वासुदेव पांडे ने कहा कि खांसी जुकाम लगने पर या कोरोना वायरस की शंका होने पर शुक्रराज अस्पताल में निशुल्क जांच कराई जा सकती है। कार्यक्रम में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. शेर बहादुर पुन ने कहा कि कोरोना वायरस जानवरों से फैलता है, इसलिए मांस खाते समय अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने कहा कि शिक्षा को श्रम और रोजगार के साथ जोड़ने की जरूरत है। आज से कैलाली के टीकापुर में शुरू हुई शिक्षा तथा व्यवस्थापन तालीम की समीक्षा गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए मंत्री पोखरेल ने कहा कि इल्म वाली जनशक्ति उत्पादन की परिकल्पना के साथ सरकार तकनीकी शिक्षा ऐन बनाने की प्रक्रिया में है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट ने कहा कि नेपाल सरकार के कर्मचारियों को अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। आज नेपाल सिलगढ़ी नगरपालिका चार की बागनेटी में निजामती कर्मचारी विद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भट्ट ने ये बात कही। ये बताते हुए कि सुदूर पश्चिम में निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले उच्च स्तर के कर्मचारियों के तथ्यांक संकलन की तैयारी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अब अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने की प्रवृत्ति को छोड़कर सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाना होगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि स्पष्ट वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा के आधार पर ही पार्टी आगे बढ़ेगी। आज पार्टी केंद्रीय कार्यालय धूम्रबाराही में गोपी रमन उपाध्याय और मनहरि तिमिल सेना द्वारा संपादित जनता को जनवाद का आधार हरू नामक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि विचार और कार्यदिशा में स्पष्टता न होने से असमंजस और अराजकता बढ़ जाती है, जिससे पार्टी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सिंधुली के घ्यांगडेह गांव पालिका के इंजीनियर दिलीप कुमार शाह को घूस सहित गिरफ्तार किया है। घ्यांगडेह गांव पालिका के विभिन्न वार्ड में ट्रांसफार्मर जोड़ने के लिए भुगतानी लेने के क्रम में सेवाग्राहियों से 1,60,000 और 70,000 के दो चेक और नगद 35,000 रूपये घूस लेते हुए इंजीनियर शाह को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी अख्तियार अनुसंधान आयोग ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण की उग्र रूप लेने के पश्चात हांगकांग ने आपातकाल की घोषणा की है और साथ ही चीन से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। संक्रमण से बचने के लिए चीनी नए वर्ष के अवसर पर होने वाले समारोहों को रद्द करने की घोषणा हांगकांग की प्रमुख कैरी लैम ने की है। चीन के वुहान शहर में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की तादाद 41 पहुंची है, जबकि 1300 से ज्यादा संक्रमित हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण अमेरिका, फ्रांस, ताइवान, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और नेपाल में भी दिखने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए इसको नियंत्रण में करने के लिए सभी से आग्रह की है। वहीं भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति ने नागरिकता संशोधन कानून CAA के कथित विरोध में अपने आप को आग के हवाले कर दिया है। 75 साल के रमेश प्रजापति माकपा के नेता हैं। उन्हें गंभीर हालत में शुक्रवार को शहर के MY अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस को उनकी जेब से CAA और NRC के विरोध के पर्चे मिले हैं। प्रजापति ने CAA का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच जाकर उन्हें समर्थन दिया था। उन्होंने अलग अलग बस्तियों में भी CAA के विरोध में जाकर लोगों से चर्चा की थी। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले 75 वर्षीय रमेश प्रजापति के बारे में उनकी पार्टी के एक सदस्य ने बताया कि वे लंबे समय से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। सरकार और प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के बीच सहमति और सहकार्य करते हुए आगे बढ़ने पर बनी सहमति। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC के कुछ प्रावधानों को परिमार्जन करते हुए संसद से पारित किया जाएगा। गृहमंत्री राम बहादुर थापा का कथन, चीन में दिखे कोरोना वायरस को नेपाल में फैलने से रोकने के लिए सजगता अपनाने का स्वास्थ्य विज्ञों ने दिया सुझाव। और कोरोना वायरस के कारण चीन में मरने वालों की संख्या 41 पहुंची। हांगकांग ने संक्रमण से बचने के लिए की आपातकाल की घोषणा। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।